हरि ओम। पूज्य संतों के चरणों में वंदन। जीवन में आराधन हमारे हृदय में आत्मा में हो, उससे ज्यादा हम ईश्वर से क्या मांग सकते हैं। यह आराधन महोत्सव हमारे प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहे तो जीवन में जो आत्मदीप है वह सदा प्रज्वलित रहेगा। आज 28वें परम पूज्य हमारे ब्रह्मलीन प्रेमपुरी आश्रम के शायद ही कोई सत्संग या स्वाध्याय होगा जिसके गुरुपद उन्होंने न लिया हो, ऐसे हृदय से जो गुरु ही है हमारे ऐसे अखंडानंद जी महाराज, उनके 28वें आराधन महोत्सव पर मंगलाचरण से हमारे आचार्य विश्वनाथ जी प्रारंभ करेंगे। तत्पश्चात जो संचालन की विधि है हमारे प्रिय और अखंडानंद जी के ही पूर्व परिवार से जो सोमदत्त जी है वह ये भार संभालेंगे। मैं विनती करूंगा आचार्य जी से कि मंगलाचरण करें। हरिओम।
मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। वागर्था विव संपृप्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बोलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जय। मंचस्थ उपस्थित संतवृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी भक्तजन ट्रस्टीगण, मंगलाचरण के निमित्त दो शब्द। आज पूज्य महाराज जी के चरणों में हमको आराधना दिवस के निमित्त हम किसी संकल्प को लेकर के बैठे हुए हैं। मैं दो शब्दों में यही बताऊं कि आराधना ये शब्द जैसे हमारे सनातन धर्म में अनेक देवी देवताओं का पूजन होता है, ये हमारी अपनी विशेषता है। कोई गणेश जी को विशेष पूजता है, कोई भगवान विष्णु को, शिव को। यहां तक भी हमारी संस्कृति यह है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। तो मूल में वैदिक संस्कृति में हमारी पूजाओं में पंचदेवता की स्थापना होती है। ये कर्मकांड से संबंधित विषय है। पंचदेवता की स्थापना में ये कहा गया है कि जो आपका आराध्य देव रहे वो प्रधान बीच में रहता है, उसमें सूर्य भी रहते हैं, विष्णु भी हैं। तो ये मूल विषय है कि जो आप किसी के घर में विशेष रूप में मतलब आराध्य देव रहे तो गणेश जी हैं, कोई शिव जी की उपासना करता है, कोई देवी की उपासना करता है। और हमारे आराध्य देव हैं महाराज श्री। तो ये विशेष रूप में हमारे जीवन को आदर्श बताने वाले। और इतना ही नहीं, आज के दिन ये संकल्प लेना है कि महाराज जी का जो ये वचन है या उन्होंने हमको जो जीवन दिया है इसके आगे के जीवन में हम कैसे चलें, तो ही वास्तव में आज का दिन सार्थक होगा। और उसी को कहेंगे आसमंता राज्यते इति आराधन, आराध्य, आराध्य से आराधना शब्द बना है। तो सभी से विनंती यही है कि हम एक विशेष संकल्प लें और इसी से इस दिन की सार्थकता होगी। ओम तत्सत।
नारायण 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 नारायण। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में इस सभा की अध्यक्षता के लिए महामंडलेश्वर जी हमारे सामने दर्शन दे रहे हैं। हम आप सबकी तरफ से, इस उत्सव की तरफ से आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, एक मर्यादा होती है। जो हमारा जिस नाम से आश्रम है, ट्रस्ट है, वो पूरी और उसका स्मरण कराते हुए ये दोनों परंपरा यहां पे विद्यमान। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सर्वेश चैतन्य जी हमारे बहुत ही स्नेही, बहुत प्रेमी, बहुत ओजस्वी वाणी, उनका भी महाराष्ट्री की साराधन में हम बार बार स्वागत करते हैं। वृंदावन से पधारे राधा, ये आराधना की जो आराध्या है वो राधा है, और हमारी राधा रानी जी के बहुत ही परम प्रिय प्रीतमानंद जी, प्रियता जिनसे झलकती है, वो हमारे वृंदावन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम उनका भी स्वागत प्रणाम करते हैं इस सभा में। आचार्य जी ने पंचदेव उपासना की बात की, पंचदेव आराधना होती है तो, और सभी गृहस्थों के घर में वो मान्य है। पंचदेव आराधना इसलिए होती है कि ये शरीर पांच तत्वों से बना है, जल पृथ्वी। हम तो महाराष्ट्री लोगों को सुनने के लिए आते हैं, तो एक एक तत्व की प्रधानता से एक एक देवता प्रमुख हो गए, तो हमारे इस शरीर में मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, अहंकार ये भी हैं पांच, तो पांच अंदर और पांच बाहर और पांच का ये शरीर, इसलिए हमारे पांच देवता की आराधना। अच्छा, बिना आराधना किए कोई रह नहीं सकता। कोई ईश्वर की आराधना करेगा, कोई गुरु की आराधना करेगा, कोई खुद अपने अहम की आराधना करेगा, मैं सबसे बड़ा, मेरा ज्ञान सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं आराधना जाके उसकी रुकेगी। मेरी बुद्धि सबसे बड़ी, अच्छा धन पड़ा, घर बड़ा, किसी न किसी की आराधना किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो ये आराधन तत्व तो हमारे यहां निर्वाण है, उसके बारे में भी हम सुनेंगे। हमने पुरी जी महाराज के मुख से शिव महिमा का वो बहुत ही मीठा लगता है जब सुनाते हैं, यद्यप कर्म करो में तद्दत अखिलम शंभो तव आराधनम, हमारे सुनाते हैं स्वामी जी, बहुत ही प्रिय लगता है। तो हम जो जो करते हैं वो आराधना हो जाए, इसकी विधा हम लोग सुनने के लिए और बैठे हैं। जीवन कैसे चले आगे, तो अभी स्वागत की एक परंपरा है हमारे ट्रस्ट की ओर से, उसके लिए हम गिरीश भाई ड्रेसवाला को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे संतजनों का, यहां पे आए हुए श्रोताओं का, श्रद्धालुओं का, भक्तों का, ज्ञानियों का, सबका स्वागत करें।
हरिओम। आराधन, आराधन जब हम बोलते हैं तो आ में आराधा आनंदन आश्रम है, और जब ही हमारे सोमदत्त जी बोल रहे थे तो मुझे लगा कि हम राधा को पुकारने आ रहे हैं, और यहां प्रेमपुरी में जब पूरा वृंदावन बसा हो और ऐसी संतों की वाणी हमें सुनने को लालायित हो, आ राधा, और बाद में है न, राधा के बिना का जीवन कोई जीवन नहीं है। वृंदावन का ये पूरा दृश्य है, ये चित्र है, और आनंदवन आश्रम, और वहां से हमारे पूज्य महाराज जी यहां पधारते थे और अभी भी पधारे ही हैं। यहां महाराज जी की उपस्थिति, प्रेमपुरी जी महाराज की उपस्थिति, ये दो उपस्थिति तो हमें ऐसा लगता है कि हम कभी समझ नहीं सकते कि है कि नहीं है, है हमेशा है। और जब ही संत पधारते हैं तो उनको वंदन पूर्वक स्वागत करने का हर श्रोता, हर सत्संगी, हर स्वाध्यायी के मन में यह लालायित रहती है। माइक किसी का प्यास हुई हो, मगर यह जो पूरी वाणी है आप लोग बोल रहे हैं, और आप सब यह वंदन पूर्वक हम संतों के आज के ये पवित्र दिवस आराधन महोत्सव के हम स्वागत करते हुए, वह जो स्वागत है आराधन रूप में, हमारे जो आत्मदीप की मैंने बात की वह आत्मदीप में बरा जाए, बाकी जो पंचदेव है या जो वो हमारे शास्त्रों की बातें हैं वो तो बहुत गूढ़ है, छोटी बात ही हम ले ले। प्रेमपुरी ये छोटा कल्प वृक्ष है, उसमें कई सुंदर प्रवचन व्याख्यान स्वाध्याय नियमित रूप से हो रहे हैं। उसमें देखा जाए तो पूरा जो माहौल है नीचे से लेकर ऊपर तक मंजिल तक या विश्वभर में जो आज प्रेमपुरी फैल रही है वेबसाइट के माध्यम से या हमारे संत कहीं भी जाके प्रेमपुरी का उदाहरण देते थे, महाराज जी का उदाहरण देते, हमारे अध्यक्ष विश्वेश्वरानंद जी महाराज जो अमेरिका में भी यह प्रेमपुरी जी महाराज का कुछ उत्सव मनाते हैं, तो हर जगह ये आराधना प्रेमपुरी की हर जैसे हर पत्ते पे नाम लिखा हो उसी प्रकार आज जो संतों की वाणी प्रेमपुरी के माध्यम से विश्वभर में कल्याण का कार्य कर रही है। तो आप सबका स्वागत और संतों का स्वागत वह एक ही प्रकार हो सकता है कि हम सब वंदन करते हुए आज के आराधना महोत्सव पर ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि राधा के रूप में वह आराधन, संतों के रूप में वह आराधन, हमारे सत्कारों के रूप में वह आराधन हमारे जीवन में हमेशा रहे और संतवाणी और संत आशीर्वाद प्रतिपल हमारे सबके जीवन में हमेशा इसी तरह रहता रहे, वही सबसे बड़ा जीवन में स्वागत होगा। आप सबकी तरफ से संतों को वंदन करते हुए, आप सबको मेरी तरफ से वंदन करते हुए हरिओम।
बहुत सुंदर भाव रखे हमारे गिरीश भाई जी ने। आराधना जो संस्कृत में है वो राध साध सन सिद्धो धातु से बनता है और इसका अर्थ होता है जैसे हम मूंगफली को क्या बोलते हैं यहां पे हमको नहीं मालूम, सिंग दाने को कढ़ाई में लेके भून दो और उसको फिर किसी जमीन में बो तो उसमें से अंकुर निकलेगा क्या? तो ये आराधना का मतलब कि भगवान की भक्ति की कढ़ाई में अपने आप को डाल के और ऐसा भून देना कि ये जगत की इच्छा का अंकुरण न फूटे। हमारा मन बाहर की ओर न जाए, ये आराधना है, आराधना का एक स्वरूप है। अच्छा, अब गल्प करते हैं, मतलब गप करते हैं, ये गप बोलते हैं, ये तो बात थी आप लोगों की कृपा से। और एक गप करते हैं हम लोग, जैसे आराधना में से बीच में से राधा निकाली हमारे गिरीश भाई ने, तो अब उसके पहले आरा है, तो ये संसार से काट के भगवान से जोड़ने के लिए एक आरी चलती है, तो ये आरा लकड़ी काटते हैं, आरा बड़ा होता है, वो आरी से बड़ा होता है, तो ये छोटे से काम बनेगा नहीं, ये आरा लगाना पड़ता है। वो आरा लगता है तो एक धन मिलता है और वो धन क्या है फिर बीच में आ जाओ, वो राधा है। शुरू का आराधा आरा और बाद का धन आराधन, और फिर दोनों को जोड़ के बीच में से जब निकालोगे तो राधा निकल आएगी। तो ऐसे ये गल्प है, ये गप है, ये कहीं मिलेगा नहीं, ऐसे आप लोगों के चरणों में बैठ के सब सूझता है। और सूझता तो उन लोगों को भी था जो वृंदावन में बैठते थे, और उनको क्या सूझता था वो मैं सुनाता हूं। राधा पुरह स्फुरति पश्चिमस्तश्च राधा, राधाधिसव्यमिह दक्षिणतश्च राधा, राधा खलु क्षितितले गगने च राधा, राधा मई मम बभू कुतस्त्रिलोकी। मैं जिधर देखता हूं उधर राधा दिखती है, दक्षिण देखा, पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, सब तरफ राधा, जमीन में देखा तो राधा और जब आकाश में देखने लगा तो राधा। ये आराधना का स्वरूप है, मतलब हमको हमारे प्यारे के सिवा सृष्टि में कुछ दिखे नहीं, और इसी को हम जब वेदांत में ले जाते हैं तो वहां पे उसको हम नहीं बोलेंगे, उसको तो सुनने आए हैं। तो अब आदरणीय प्रीतमानंद जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि आज 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक 7 दिन का ये कार्यक्रम जो हम लोग यहां 2 घंटे का मनाते हैं, 3 घंटे का, ये वहां 7 दिन का मनाते हैं महाराज जी का उत्सव, और वृंदावन के बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों को बुला के सुबह 7 दिन सुनते हैं अलग अलग विद्वानों को, और शाम को एक कथा का आयोजन रखते हैं और उत्सव होता है। 7ों दिन भंडारा चलता है वहां और लोग आते हैं, एक विशाल भंडारा भी अंतिम दिन करते हैं। गायों की सेवा हो रही है वहां, हमारे प्रीतमानंद जी वहां का रस आपको देंगे, वहां की आराधना का स्वरूप प्रणाम करता हूं। महाराज जी के संस्मरण है आपके पास, आप 2 साल रहे भी, महाराज जी को दर्शन भी किया, बचपन में ही आ गए थे, तो इनको सौभाग्य मिला है कि महाराज जी का भी दर्शन मिला है आपको, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।
सिंदूरांगम दरोद्यनमदन नयन युगम मूर्ति देव्यानुरागम काश्मीरलिप्तिभालं ललित तुलसिका मुक्तिमानिबालं हरिसों हरीन्द्रं रघुकुल तिलकं ध्यानीस्मतांच वक्त्रं रोमांचचंच तनुमरुणपटुं मारुतिं चिन्तयेयं वरहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवास कनककपिशं वैजयंतीं च मालं रंध्रान वेणुरधरिषधया पूरयन् गोप्यवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः।
धूमड भगवन् नाम गोविंदे बोलो हरि गोपाले बोलो गोविंद ओ गोविंदे बोलो हरि गोपाले बोलो लो राधारमण हरि गोविंदे बोलो राधा लो राधारमण हरि गोविंदे बोलो लो गोविंदे बोलो हरि गोपाले बोलो गोविंद लो राधारमण हरि गोविंदे बोलो राधा। भोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मंच में सभी विराजमान संतों की श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित भागवत कथा नवरागी सज्जनों एवं भक्तमती माताओं, हम सभी लोग यहां पर विराजमान हैं आराधना दिवस के पर्व अवसर पर। सभी हम लोग बैठे हैं, बड़े बड़े संत महापुरुषों का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन महाराज श्री जी के जीवन में, महाराज जी के विषय में, वो तो वही थे, दूसरा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अपनी वाणी को थोड़ा बहुत उनके पावन चरणों में बैठ करके धन्य करते हैं। तो महाराज श्री जी का ही बड़ा सुंदर शब्द है कि एक तो हमारा सबसे सौभाग्य है कि हमारे मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमको इतने सुंदर संतों का दर्शन हुआ, तो हमारा कल्याण तो हो गया। यदि इतने सुंदर संतों का दर्शन हुआ तो हमारा कल्याण हो गया। अब यदि हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा तो वो हमारी कमी है, क्योंकि हम इतने अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में रहे लेकिन सीखे क्या। प्रश्न बड़ा सुंदर है अपने जीवन को चलाने के लिए। उपासना भी लोग करते हैं, आप लोग सब संतों के द्वारा बड़ी सुंदर सुंदर बात श्रवण करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज भी उपासना करते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने उपासना जो की है वो भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए। और श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर उपाख्यान आया है, हिरण्यकश्यपु ने उपासना की तो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, केवल अहंकार के लिए। तो यदि हमारी उपासना शरणागति में आराध्य के बिल्कुल समीप पर है तब तो हमारी उपासना ठीक है। यदि उपासना का उद्देश्य हमारा केवल भगवत प्रीति है तब तो हमारी आराधना ठीक चल रही। यदि उपासना हमारी भटक गई या हम भटक गए उपासना से तो उसमें सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता है, नहीं तो कृपा। आप सभी लोग यहाँ पर, सभी श्रोतागण जितने बैठे हो तो सभी सत्संगी हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के सब सत्संग श्रवण करते हैं। हिरण्यकश्यपु को वरदान प्राप्त हुआ और वो वरदान भक्त के सामने फेल होता है। परम पूज महाराज श्री जी भागवत दर्शन में बड़ा सुंदर भाव दिए हैं, आप लोग सब देखे होंगे कि एक तरफ ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम किसी से नहीं मरोगे, और दूसरा वरदान दिया होलिका को कि तुम साड़ी पहन के बैठोगे, तुम किसी से नहीं मरोगे। लेकिन भक्त प्रहलाद के सामने दोनों फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उद्देश्य सही नहीं था। तो यदि हम इतने अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में रहे हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। तो यहां पर महर्षि जी के जीवन पर बड़े बड़े अनुभव देखे गए हैं और आप लोग सब जानते भी हैं, लेकिन महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। अभी बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे राधा शब्द की, लेकिन महर्षि जी ही कहते हैं कि कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है, जो कृष्ण वही राधा, जो राधा वही कृष्ण है। क्योंकि क्री शब्द में आप लिखेंगे तो क्री, कृष्णा जब बनता है तो क्री यहां है और री उधर है, तो एक प्राण दो देह है, जो कृष्ण वही राधा है, जो राधा वही कृष्ण है, दूसरा कुछ है नहीं। लेकिन महाराज श्री जी के जीवन पर हमको और आपको कुछ शिक्षा लेना है, और मरे महाराज जी ने बड़ी सुंदर शिक्षाएं दी हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण का स्वरूप है सतचित आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा, वैसे ही महाराज श्री जी का जीवन सबने देखा, आनंद स्वरूप, हमेशा प्रसन्नता। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर बड़ी सुंदर भाव देते बड़े बड़े विद्वान कि तीनों तापों को दूर करने वाले ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा, वो तीन ताप कौन है? तो आदि दैविक आदि भौतिक त्रिताप से घटाते हैं। तो परम पूज महाराज श्री जी अपने जीवन पर हमको और आप सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमारे जीवन में यदि विपत्ति आती है, थोड़ी सी भी, पुत्र की विपत्ति, धन की विपत्ति, अपने उन्नति की विपत्ति, तो हमारा मन बिगड़ जाता है। लेकिन महाराज श्री जी कहते हैं अपने जीवन में सबसे बड़ी संगति है कि मन को मत बिगाड़ो, मन को आनंद में ही रखो। जैसे भगवान श्री श्याम सुंदर ने मन को नहीं बिगाड़ा, पूतना हलाहल विश्व लाने के लिए आई लेकिन भगवान श्री श्याम सुंदर ने मन को नहीं बिगाड़ा, उसी प्रकार से परम पूज महाराज श्री जी अपने जीवन पर दिखा रहे हैं भक्तों को कि हे साधुको सावधान, मेरे जीवन पर जो कष्ट है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा कष्ट है, लेकिन महाराज श्री जी के जीवन में वो कष्ट कष्ट नहीं है, वो आनंद ले रहे। क्योंकि लास्ट के जीवन पर मैंने देखा कि महाराज श्री जी के शरीर पर इतनी पीड़ा, बड़े बड़े डॉक्टर सभी लोग वृंदावन की भूमि पर विराजमान थे, लेकिन महाराज श्री जी का नारायण 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 शब्द अपने मुखारविंद से निकल रहा था और पूरे आनंद वृंदावन में वो शब्द गूंज रहा था। और हमारे यदि जीवन में थोड़ा सा कष्ट होता है तो हम लोग क्या पुकारते हैं आप लोग सब जानते हैं। तो ऐसे महापुरुष ने अपने जीवन पर दिखाया कि नाम को पुकारो, नाम ही सत्य है। और इतने बड़े बड़े यदि हम लोग जीवन पर शिक्षा ग्रहण करें तो महाराज श्री जी अपने जीवन पर दूसरा भाव देकर के समझाते साधकों को कि यदि आपके भी जीवन पर यदि कोई कष्ट है तो भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का यश गान गाओ, तभी आपके कष्ट की निवृत्ति होगी। तो भगवान भी अपने जीवन में ये लीला दिखा रहे हैं साधकों को, यशोदा मैया देख रही है, नंद बाबा ग्वाल बाल इत्यादि सब सारी गोपियां देख रही हैं कि कन्हैया को उठा करके पूतना गई, लेकिन कन्हैया को कष्ट नहीं। कन्हैया तो विचार कर रहे हैं कि ये बाल घातनी इतने बालकों का वध करती है तो इसका मैं उद्धार करूं, सदगति दूं, क्या दूं, ये विचार करते। उसी प्रकार से बड़े बड़े महापुरुष लोग इस धरातल भूमि पर आते हैं। तो परम पूज्य महाराज श्री जी का जो जीवन है वो साक्षात भगवत स्वरूप, उस पर किसी भी प्रकार की संगति अतिशयोक्ति के द्वारा नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो परमात्मा का रूप है, जो परमात्मा का चिंतन मिलता है, वही परम पूज्य महाराज श्री जी के जीवन का मिलता है। आपे के ग्रंथ बड़े बड़े विद्वान महाराज श्री जी के जीवन पर बैठ करके आनंद लेते थे, अब वो आनंद महाराज श्री जी के सिर्फ ग्रंथों पर मिल रहा है। बाकी ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता आप लोगों की दृष्टि में ऐसा कोई महापुरुष हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं इतना जानता हूं कि इतने अच्छे महापुरुष का दर्शन अब मुश्किल, केवल उनकी वाणी का ही दर्शन है और वो वाणी ग्रंथों पर मिल रही है, और उसी वाणी के द्वारा हम अपने जीवन को चला सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम अपने आराध्य के चरणों में बैठ करके निवेदन कर सकते हैं कि हे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, हमको भी आप उस शक्ति दे, उस वृद्धि दे, हमको भी उस सद्बुद्धि दे, ताकि हम अपने जीवन को ठीक तरीके से चला सके। क्योंकि अधिक समय तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि महाराज श्री जी यहां विराजमान है और महाराज जी की परंपरा थी कि महाराज जी के सामने भी बड़े बड़े संत लोग आते थे तो महाराज जी एकदम मौन हो जाते थे और सुनते थे, आनंद लेते थे। तो वो सुनने में जो आनंद है वो ज्यादा बोलने में आनंद नहीं है। तो इतना ही कह करके परम पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणारविंदों में अपने वाणी को राम करता हूं और महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन ऐसी करते रहें, ऐसे संतों के दर्शन से और ऐसे संतों के मुखारविंद से जो हमको श्रवण करने को मिलेगा वो भी महाराज जी की कृपा ही होगी, क्योंकि महापुरुष की कृपा जब होती है तभी ऐसे संतों का दर्शन मिलता है। तो यही महाराज जी की कृपा है कि हम लोग अपने जीवन में ऐसे संतों का दर्शन करते रहें और महाराज श्री जी के जो शब्दावली है, जो उनके ग्रंथ हैं, जो उनके अनेक अनेक संस्मरण है, यही प्रेमपुरी में बहुत पहले प्रवचन कर रहे थे और पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज श्री जी का वहां पर दर्शन हुआ जहां पर महाराज श्री जी नित्य निवास करते थे। तो पूज्य पंडित जी महाराज ने महाराज श्री जी से एक बात बोली, बोले महाराज श्री जी बहुत दिन हो गए मेरे को पाठ करते करते, कुछ आप ऐसी कृपा कर दीजिए ताकि मुझे श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन हो जाए। तो महाराज श्री जी बड़े मौज में बड़े आनंद में थे, तो अपने ऐसे बिस्तर पर बैठे थे, पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज से महाराज श्री जी ने कहा कि जरा देखो खिड़की तरफ। तो महाराज श्री जी ने जो कहा कि खिड़की तरफ देखो, तो वहां पर एक बंदर और अपने हाथ में सेव लिए और मुख पर खा रहा है। बोले बस इसी का दर्शन करके मान लो यही श्री हनुमान जी महाराज। तो ऐसे महाराज श्री जी का जो दर्शन जिसको भी हुआ है और जिसने भी किया है तो भगवत दर्शन प्राप्त हो चुके, और उनके बस जीवन पर बस एक ही भाव है कि सच्चे मन से आराधक की आराधना तभी सच्ची है जो अपने आराध्य के चरणों में समर्पण होकर के करे, जैसे श्री हनुमान जी महाराज। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में प्रणाम। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।
बहुत सुंदर भाव हमारे प्रीतमानंद जी ने रखे। महाराष्ट्र से भी किसी ने पूछा कि आराधना क्या होती है, तो महाराज जी ने कहा कि साधना में जीवन ही आराधना है। एक पंक्ति में ये जीवन जो है तुम्हारा, ये सरलता से सहजता से निकल जाए, यही साधना है, यही आराधना है। फिर नहीं माना वो, कहा कि और बताइए। तो कहा देखो तीन चीज है तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर मन है, तुम बोलते हो तो वाणी है, और शरीर है। ये तो स्पष्ट है। तो कहा है, तो कहा कि महाराज जी ने कहा कि मन से राग द्वेष निकाल दो, तो इसकी विधि यह है कि भगवान को बिठाओ। वाणी से मधुर बोलना है तो भगवान का भजन करो, और शरीर को सदाचार में और सेवा में लगा दो इस समष्टि की, तो ये जीवन आराधना में हो जाएगा। ऐसे कर महाराज जी ने हनुमान जी की चर्चा कर रहे थे हमारे पितमान जी महाराज, तो महाराज जी की वो वेदांत परक बहुत बढ़िया स्तुति है, मैं आप लोगों को सुनाऊं तो कहें तो आज्ञा हो तो। देह पात्रम जीवनम स्नेहधारा वर्ति ही प्राणा ज्योतिरात्मेश जीवः वाचो ध्वानम चापलम नृत्यमित्थम स्वारार्तिक्यम मारुतेश चिंतेयहम। ये हमारा जो शरीर है वो दिया है मिट्टी का, और इसमें जो प्राण है, जो जीवन है, वो बाती है, जल रही है। जो मैं बोल रहा हूं वो घंटी है, और जो मैं ये चल फिर रहा हूं वो दिया हिल रही है। तो हे हनुमान जी, ये मेरा पूरा का पूरा जीवन दिया में है, और मैं इसको आरती जैसे आपको समर्पित करता हूं। ऐसे भाव हैं उसके। ये 76 श्लोक महाराज जी ने हनुमान जी की स्तुति में लिखे, और सारे के सारे वेदांत वो परक हैं। वेदांत की स्तुति हनुमान जी की वेदांत से वो अनूठा ग्रंथ है। विद्यानिवास मिश्र ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है कि हमने ऐसा ग्रंथ हनुमान जी की स्तुति में कभी देखा नहीं है। तो वो 76 और मजे की बात की 76 श्लोक और 76 वर्ष की महाराष्ट्री की आयु वय। तो और हमारे महात्मा तो बहुत आनंद लेते थे कि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी महाराज की उम्र में भी चौका लगा 8 चौके 32, और महाराज जी का भी 19 चौके 76, दोनों लोगों ने चौका लगाया। ऐसे विनोद करते थे। 19 में मार्केश था महाराज श्री के, आप लोग जीवन से परिचित हैं, तो 19 का उनका भी जीवन और हमारे तो एक साम में वो है। और हमको तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं जब इन महापुरुषों को हम देखते हैं, शंकरम शंकराचार्यम, हम खाली बोलते हैं ये किस परंपरा से हैं, मतलब कितना गौरव होता है। मेरा तो हृदय ऐसा निकलता है कि बाहर आ जाएगा आपके दर्शन देख के, आप लोगों के दर्शन, क्या परंपरा रही है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम, कौन सी विद्या का वाहक आप लोग हैं और साक्षात दर्शन करते हैं। भगवान आके क्या करेंगे, 2 मिनट आएंगे, 3 मिनट में चले जाएंगे। ये भगवान चलते फिरते हम लोगों के बीच में बैठे हैं और हम लोग लाभ नहीं ले रहे, ये हम लोगों का हतभाग्य है। तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और गिरीश जी से मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे आचार्य जी का परिचय दें। आप यहां पर भागवत करने जा रहे हैं।
अरे हो, समय की मर्यादा देखते हुए परिचय में इतना ही है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रेमपुर जी महाराज का पूर्व शरीर हमारे सौराष्ट्र का, आप सौराष्ट्र के हैं, हमारे आनंदवन आश्रम के महंत जी रहे वह भी हमारे सौराष्ट्र के ही थे। तो सौराष्ट्र की एक खुशबू है, और उस खुशबू का आनंद आज सायं 3:30 से हमें प्राप्त होगा। इनकी जो यहां विराजमान है भाणभट्ट जी जो मोरबी के हैं सौराष्ट्र के, और गुजराती में उनका जो पूरा श्रीमद भगवत ज्ञान यज्ञ उनका आज से प्रारंभ होगा भागवत का। आप सभी से निवेदन है कि 3:30 से यह गुजराती में बहुत ही सुंदर प्रवचन धारा प्रेमपुरी को प्राप्त हो रही है, तो उसका हम आनंद लें। अभी हम उनके मुखारविंद से कुछ सुंदर शब्द हमें सुनेंगे। 9:30-10 जब भी यह आराधन महोत्सव की पूर्णावती होगी, तत्पश्चात बाबुलनाथ वो पोथी का जो हमेशा हम लोग करते हैं वो पोथी लाने के लिए सब लोग जाएंगे। जो बैठना चाहे जो आना चाहे वो आनंद ले सकते हैं। और 3:30 से इनके शुभमुख से यह भागवत ज्ञान यज्ञ आज से प्रारंभ होगा 25 तारीख तक। मैं विनती करूंगा पूज्य भाणभट्ट जी आचार्य जी से कि आप थोड़ा आशीर्वाद इस प्रसंग में दें। हरिओम।
कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्रीनाथ शरणम मम। उपस्थित संतों को सब सज्जनों को प्रणाम। भारतवर्ष के अध्यात्म का इतिहास देखा जाए तो एक समय ऐसा आता है कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की संगति बिठाना मुश्किल हो गया था। एक विरोध पैदा हो गया था, वास्तव में विरोध नहीं है लेकिन विरोध खड़ा हो गया ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग। एक ग्रंथ ऐसा हमारे पास आया कि उन विरोध को मिटाकर संगति बिठाई गई। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग की ऐसी संगति श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत के हर अध्याय में, हर पन्ने पे, हर श्लोक पे आपको मिलेगा ज्ञान की बात, भक्ति की बात। ऐसी इस तरह रची गई है कि आपको मालूम न पड़े कि दोनों अलग अलग है। दृष्टांत एतावान लोकेस्मिन पुंस स्वार्थ परम स्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे, एकांत भक्तिर गोविंदे यत सर्वत्र तदीक्षणम। देखिए एक ही पंक्ति में एकांत भक्तिर गोविंदे, उसका मतलब क्या? सर्वत्र तदीक्षणम, ये उपनिषद की बात हुई। सर्वम खरिदुम ब्रह्म तज्जड़ा आनीते, वही बात हो गई। तो एक एक श्लोक में ज्ञान की बात भी होगी, भक्ति की बात भी होगी। एक विरल महाग्रंथ है जहां ज्ञान भक्ति योग की संगति बिठाई गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत कोई सरल ग्रंथ तो नहीं है। भाषा की दृष्टि से भी सरल नहीं है और अर्थ की दृष्टि भी सरल नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, श्रीमद् भागवत में विद्वानों की परीक्षा हो जाती है। तो ज्ञान और भक्ति की संगति सामान्य जन समाज तक पहुंचाने का सबसे बड़ा काम कोई महापुरुष ने किया तो हमारे महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती ने किया है। ज्ञान भक्ति की संगति, ज्ञान श्रीमद् भागवत की जो बात है हम तक पहुंचाई, हम तक सामान्य जन समाज तक ज्ञान भक्ति की संगति उन्होंने बिठाई है। आज से 35 साल पहले मैं लोनावाला के केवलधाम योगाश्रम में रहता था तो पेपर में पढ़ा कि स्वामी जी महाराज की श्रीमद् भागवत की 15 दिन की कथा यहां हो रही है। मुझे तो मालूम नहीं था कि ब्रह्मपुरी आश्रम क्या है, लेकिन फोन नंबर था उस पर पेपर में। मैंने फोन किया कि मुझे कथा सुननी है, तो यहां देशवाला साहब थे, सीनियर देशवाला, उनके कहा कि आ जाओ खुशी से आओ। मैं यहां आया 35 साल पहले और इसी संस्था पे सबसे पहले मैंने स्वामी जी महाराज के मुख से 15 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनी। बाद में विपुल में हमेशा मैं जाता था उनको मिलने के लिए, बड़े प्यार से मेरा स्वागत करते थे, सत्संग भी होता था। लोनावाला में वो कई बार आते थे, तुलसी साधना कुटीर, तुलसी साधना कुटीर लोनावाला में, वहां कई बार आते थे, हफ्ता भर रहते थे, तब भी मैं उनको मिला करता था। बाद में मैं एक बार वृंदावन गया तो उनके आश्रम में, आनंद घन आश्रम, उड़िया बाबा जी महाराज के बाजू में उनका आश्रम है, वहीं ठहरा। मुझे प्रेम से रखते थे, रखो रहो रहो। तो उनके पास से मैं सबसे बड़ी चीज सीखा, भक्ति ज्ञान में कोई विरोध नहीं है, इतना ही कोई द्वेष ही नहीं है। भक्ति कहो ज्ञान हो एक ही बात है, इतनी गहराई से और इतनी तर्कबद्ध दृष्टि से उन्होंने बताई है और मेरे मन में वो बात उतर गई कि भक्ति कहो ज्ञान कहो एक ही बात है, कोई भिन्नता नहीं है। हां बहिरंग दृष्टि से लगता है, लेकिन कृष्ण की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा करो और अद्वैत में जाओ, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। ये बात इस युग में अगर किसी ने बताई है तो स्वामी जी महाराज ने बताई, ऐसा मेरा एक हृदय की भावना ऐसी मेरी है। मैंने उनको कई बार सत्संग किया है, कई प्रश्न पूछे है, उन्होंने ठीक से उत्तर दिया है। हमारे आश्रम की लाइब्रेरी में स्वामी जी महाराज के सब पुस्तकों का पूरा सेट रखा गया है स्वामी जी के महाराज और मैं श्रीमद भागवत की कथा शायद उनसे सीखा हूं। उनके किताबें पढ़ता हूं तब मालूम पड़ता है क्या करना है। ये गोपी गीत है, ये पंचगीत है, क्या है, कैसे समझा के बनाना है। तो स्वामी जी महाराज की जो पद्धति थी श्रीमद भागवत की कथा में और कोई बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं। आजकल फैशन शुरू हो गई है श्रीमद भागवत की कथा कम दूसरी बातें बहुत, रामायण की बात कम दूसरी बातें ज्यादा, ऐसा शुरू हुआ है। स्वामी जी वैसा कभी नहीं करते, विषयांतर नहीं करते। श्रीमद भागवत तो श्रीमद भागवत, उनसे मैं सिखा होगा श्रीमद भागवत की कथा में और कोई बातें नहीं बनाना है। हाँ, कथा को सरल बनाने के लिए आप दृष्टांत दे सकते हैं वो ठीक बात है, कोटेशन दे सकते हैं वो ठीक बात है, लेकिन भागवत को इधर रख के और इधर उधर की बातें करना स्वामी जी ऐसा कभी नहीं करते थे। इससे मैंने उनसे सीख लिया हूं श्रीमद भागवत की कथा में केवल श्रीमद भागवत और मूल कथा को छोड़ के कहीं दूर नहीं जाना है, विषयांतर नहीं करना है और महत्वपूर्ण कोई बात को छोड़ना नहीं है। ये छोड़ दिया नहीं, साफ सप्ताह में करो या 15 दिन में करो, श्रीमद भागवत के कोई महत्वपूर्ण आख्यान को छोड़ने नहीं चाहिए। ये बात भी मैं उनसे सीखा हूं, शायद मैं उनके पीछे चलने की मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं उनके पद पर पद रख के श्रीमद भागवत कथा करता हूं। आज इस अवसर में उस महापुरुष को बहुत प्यार से प्रणाम करता हूं, सबको धन्यवाद।
अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन ये तो पुरुषक परम, तीनों धाराओं का पोषण करने वाला भागवत और ऐसे भागवताचार्य, सबको हम प्रणाम करते हैं। हमारे मध्य सर्वेश चैतन्य जी महाराज विराजमान हैं, मैं आपसे भी विनती करूंगा। उसके पहले गिरीश भाई को मैं महाराज जी की एक कविता सुनाना चाहता, संस्कृत में तो सुना दिया महाराज जी, पद हिंदी का भी बहुत बढ़िया महाराज जी का कवित्व था। तो एक है, प्रीतमानंद जी हैं, आप सब लोग हैं, आप भी हैं, तो महाराज जी का है, निर्देश भी है, साथ साथ निर्देश है और एक रस भी है। बनना कवि पर कभी दुख के गीत न गाना, बनना कवि पर कभी दुख के गीत न गाना, टीका करके कभी न मन में व्यथा बुलाना। ये जो टीका टप्पणी कर देते हैं हम दूसरे पे, उस पे मतलब कभी कोई टीका मत करना किसी पे कि तुम ऐसे हो तुम वो हो। टीका करके कभी न मन में व्यथा बुलाना, रहो हमेशा सरस प्रीति की रीति बढ़ाओ, रहो हमेशा सरस प्रीति की रीति बढ़ाओ, तन मन धन के बिना प्रेम के फूल चढ़ाओ। दिल को कड़वा मत करो, रखो सदा रस घोल, सुनकर सब सुख में सने बोलो ऐसे बोल। ये आराधना का एक स्वरूप महाराज श्री का, हम सर्वेश चैतन्य जी की ओजस्वी वाणी।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में कुछ सह नमन। ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जी के भी चरणों में कुछ सह नमन। इसे सब महापुरुषों का नाम लेते हैं उनके परिचय के लिए, लेकिन उनका परिचय हम क्या दे सकते हैं, वो तो स्वयं ऐसे दीप हैं, दीप का एक ऐसे सूर्य हैं जिनकी आभा पूरे विश्व में प्रकाशित हो रही है। ऐसे ही इस सभा के अध्यक्ष गुरुदेव जी महाराज हैं, जिस आश्रम के विषय में आप जानते ही हैं, ज्ञान की धारा गंगा रूपी ज्ञान की धारा हरिद्वार से निकल करके कहां तक जा रही है? गंगा सागर तक जा रही है। प्रेमपुरी नहीं भाई, उस गंगा का एक छीटा होता ना, जब पानी बहता ना एक छीटा है, तो हमारे जैसे छीटे आ जाते हैं और बंबई में भी आ जाते हैं। तो हम लोग तो उस एक विशाल धारा के एक क्या है, जिसे आग जलती है, विशाल आग होवे तो उसकी एक चिंगारी होती है, तो हम लोग तो एक छोटी मोटी क्या है चिंगारियां हैं, यह तत्व जाकर के प्रकाशित कर देते हैं थोड़े से क्षेत्र को, लेकिन वो धारा तो विशाल धारा है। महाराज जी, स्वामी जी महाराज जो राजस्थान प्रसिद्ध है वीर भूमि नहीं है, उस वीर की भूमि में ज्ञान का रस बरसा करके देखो, इसमें सबसे ज्यादा बाढ़ आती है तो कहां आने लगी है? राजस्थान में आने लगी है। तो पहले राजस्थान सूखा क्षेत्र था, अब राजस्थान क्या हो गया? ते संतों का ही प्रताप है, तप है। तो महाराज जी के चरणों में मेरा कुछ सह नमन। स्वामी प्रीतमानंद जी महाराज, जिनकी आपने भक्तिमयी वाणी का श्रवण किया, पंडित सोमदत्त जी, विश्वनाथ शास्त्री, अन्य भक्तिमती माताओं और सज्जनों, हम लोग अभी एक दृष्टांत दिया पंडित सोमदत्त जी ने, बहुत बढ़िया, सिंगदाना का है ना, जब उसको उबालते हैं तो भक्ति रूपी आंच में अपने अंतःकरण कितना पका लो कि संसार का बीज अंकुरित होने ही ना पावे। लेकिन हम लोग बड़े चालाक हैं, कभी आप लोगों ने भूना होगा कोई चीज, देखा होगा कि कोई चीज जब डालते हैं ना उस भट्टी में भूनने के लिए, तो कोई बीज फुदक करके बाहर कूद पड़ता है, देखा नहीं देखा है? तो हम लोग वही बीज हैं, भक्ति रूपी आंच में जाते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं, जरा सा ज्वाला मिली, जरा सा थोड़ी सी हमारी मैप पे चोट आई तो उछल करके बाहर भाग जाते हैं, कहां? संसार में। तो फिर से जो भूंजने वाला होता है ना, वो क्या करता है, उसको बिन करके चुप करके फिर से उसी में डाल देता है, तल देता है। क्यों भाई? यही होता ना भाई। तो ऐसे हम लोग भी ध्यान देना, महापुरुषों का चाहे निर्वाण महोत्सव मनाएं, चाहे जन्म महोत्सव मनाएं, और हर महापुरुषों का कोई भी बार बार जो फुदक करके बाहर चले जाते हैं ना, तो अपने चित्त की वृत्ति को संसार में न ले जाकर के बीच बीच में झोंकते रहो, उस भट्टी में, संतों की भट्टी में अपने आप को डालते रहो। इसलिए हम बीच बीच में महोत्सव मनाते रहते हैं। अभी आपने चार पांच दिन पहले, दो दिन पहले स्वामी जी त्यागमूर्ति जी महाराज का आपने लाभ पंचमी जन्म महोत्सव मनाया, आज महाराज जी का आराधन सर निर्वाण चाहिए ना, आराधन महोत्सव है। इसके बाद अभी 7 और 8 तारीख 7 को स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज का निर्वाण महोत्सव मनाएंगे। बीच बीच में कभी संन्यास जयंती भी फरवरी में शायद मैं रहूंगा, उसी समय है कि नहीं है, 18 उस समय मैं रहूंगा, संन्यास जयंती मनाते हैं, या बीच बीच में कभी न कभी कोई न कोई हम एक संतों का किसी न किसी रूप में हम जोड़े रहे। हमारे चित्त की वृत्ति जो बीच बीच में हम संसार में घुस जाते हैं ना, वहां से निकालने के एक साधन है। इसलिए हमारे आध्यात्म की परंपरा में, सनातन की परंपरा में, कभी सावन, कभी कार्तिक, कभी नवरात्रि, कभी कोई, इतने ऐसा नहीं कि शंकर जी अलग हैं, भगवान विष्णु अलग हैं, देवी जी अलग हैं, ये अलग अलग नहीं महात्मा, जान लेना भगवान सारे क्या है, एक ही सत्ता है। वही सत्ता जगत की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा रूप बन जाते हैं, वही सत्ता जगत के संचालन के लिए क्या बन जाते हैं, विष्णु रूप, जगत के संहार के लिए वही क्या बन जाते हैं, रुद्र रूप बन जाते हैं, वही देवी हैं, वही सब कुछ है। ऐसा ही अभी एक स्वामी प्रीतमानंद जी बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन थोड़ा सा हम थोड़ा असहमत हो गए, थोड़ा सा असहमत हो गए। क्या बताया कि महाराज जी से जब रामकिंकर जी ने कहा हनुमान जी का दर्शन, या कहा ना तो कहा बंदर के रूप में क्या कर लो, हनुमान जी का दर्शन कर लो, हनुमान जी हैं। तो मैं कहता संतों के रूप में महाराज जी आते हैं, किन्हीं किन्हीं रूपों में सारे अवतार, महाराज जी कोई शरीर थोड़े थे, बताओ
महाराज जी का शरीर के साथ थोड़े कोई संबंध था। यदि व्यक्ति ज्ञानवान है तो उसका तो जैसे इस शरीर के साथ संबंध होता है उससे संसार के सारे संयोग के साथ संबंध होता है। अष्टावक्र गीता का एक श्लोक होता है, यथा प्रकाश्याम देह मेनम, जैसे मैं इस देह को प्रकाशित करता हूं ते देह मेरा है, ऐसे संसार के सारे शरीरों को मैं ही प्रकाशित करता हूं। तो संसार के सारे शरीर किसके हैं? मेरे ही हैं। अथवा ये देह मेरा नहीं है तो संसार का कोई भी देह मेरा है ही नहीं। तो महाराज जी ही संसार के चर अचर रूप में है, उनकी सत्ता। ऐसा नहीं महाराज जी पहले थे अब नहीं है आगे नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। महाराज जी पहले भी थे, उस शरीर के पहले भी उनकी सत्ता थी, आज भी सत्ता है और आगे भी उनकी सत्ता हमेशा रहेगी। हमारी दृष्टि चाहिए उस वस्तु को देखने के लिए। फिर भी महाराज जी का हम लोग कहीं न कहीं बीच बीच में उत्सव मनाने का प्रयोजन क्या है, हम क्यों मनाते हैं, आवश्यकता क्या पड़ गई? तो देखो आप लोग घर से आए होंगे, एक शीशा तो देख के आए होंगे, शीशा देखा था? नहीं देखा था। और शीशे देखते वक्त थोड़ा सा बाल इधर हो गया या कोई बिंदी हो गई या कुछ हो गया तो उसको क्या करके आए थे? ठीक करके आए थे। तो हम भी संसार रूपी यात्रा करते हैं तो कहीं न कहीं संसार के विषयों के कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्या पड़ जाते हैं, छींटे कहीं न कहीं लग ही जाते हैं, पड़ ही जाते हैं। और वो छींटे जो पड़ते हैं तो जब महापुरुषों का हम जीवन चरित्र किसी भी बहाने, पहले मैंने बताया बहाना कोई भी हो, चाहे संन्यास उत्सव हो, चाहे आराधन महोत्सव हो, चाहे जन्म महोत्सव हो या गृह त्याग, स्वामी त्याग मूर्ति जी महाराज का गृह त्याग दिवस भी मनाते हैं होली के समय, कोई भी उत्सव हो, उन अवसरों पे उन महापुरुषों की जीवन की थोड़ी झलक, उनके जीवन का एक तरीका, उनके चिंतन, उनका दर्शन यदि हम श्रवण कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो अपने भीतर जो दोष है ना, उन दोषों का पता चल जाता है। और जैसे उन दोषों का पता चल जाता है, हम उस कमी को क्या कर लेते हैं, अपने से दूर कर लेते हैं। और दूर करने के बाद क्या करें, एकदम निश्चिंत हो जाएं? नहीं नहीं, बीच बीच में देखते रहना चाहिए। आप भी बीच बीच में दर्पण देखते हो, एक दो बार तो देख लेते हो गया। तो बीच बीच में दर्पण देखते रहना चाहिए, अपने महापुरुषों के चरित्र से, महापुरुषों के जीवन के साथ रह करके हम अपने जीवन को देखते रहें, अपने जीवन को हम देखते रहें कि हमारे भीतर कोई दोष तो न आवे। जैसे वही बता रहे थे महाराज जी का शरीर इतना वो था, मतलब लगभग लगभग लास्ट के समय में, अंतिम समय में इतना रोग था, लेकिन फिर भी महाराज जी के चित्त में वही प्रसन्नता। और हम लोगों के जीवन में जरा सा दुख आता है तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, हाय हाय करना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम महापुरुषों के जीवन में से उस असंगता को सीख करके, उस असंगता को सीख करके अपने जीवन में भी ऐसी असंगता लावे, ऐसे इन महोत्सवों का तात्पर्य है, इन उत्सवों का तात्पर्य है। जब तक हम उनके चरित्र से, उनके जीवन से अपने जीवन का वो क्या सामंजस्य तारतम्य बैठा करके अपने जीवन का परिष्कार नहीं करेंगे, आप उत्सव मनाओगे चले जाओगे, इससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए उनके जीवन में आकर के, उनके जीवन में घुस करके अपने जीवन को उनके मैं बना लो, तो जो महाराज जी की स्थिति थी या जो ब्रह्म की स्थिति है, वही स्थिति किसकी हो जाएगी, हम सबकी हो जाएगी। और हम सबको यही बनना है, क्योंकि इसके बिना हमारे जीवन की मुक्ति नहीं है। स्वामी जी का जीवन के विषय में तो हमने तो भाई सुना है, दर्शन नहीं किए हैं। मैंने बताया ना कि जैसे वो कहते हैं ना, क्या सोमदत्त जी महाराज कहते हैं, स्वामी जी आपको देख करके ना मैं आपके रूप में अपना रूप देख लेता हूं। ये सोमदत्त जी की भाषा है कि आपके रूप में मैं अपने आप को देख लेता हूं। ऐसे ही सोमदत्त जी को देख करके ना महाराज जी को इनके रूप में देख लेता हूं, क्योंकि पिता हुए पुत्र पुत्री, तो पिता ही पुत्र के रूप में आता है, ठीक है ना। अब पुत्र का भी पुत्र वो पिता के रूप में हुआ, तो तारतम्य तो वही है, अंश तो वही है, तो इनके रूप में मैं उनको ही देख लेता हूं। तो एक कल्पना कर लेता हूं कि महाराज जी की भी स्थिति कुछ न कुछ अनुमान तो कर ले, बहुत ऊंची स्थिति थी, नहीं करता, क्योंकि देखो वृक्ष तो वृक्ष ही रहेगा, अभी कोई आया था बाप बाप ही रहता है, बेटा तो बेटा ही रहता है, तो उसको उसी जगह रहने देना। तो इनके रूप में ये लोग सुने हैं, पास रहे हैं, महाराज जी के सारे ग्रंथों का इन्होंने प्रकाशन आदि भी किया हुआ है, तो पूरा एकदम ओत प्रोत हो गया है। महाराज जी की एक एक बाणी पूरे हृदय में गूंजती रहती है। लेकिन फिर भी देखो महाराज जी के जीवन के विषय में, उन्होंने अपना जीवन जिया, गृहस्थ जीवन में भी गए, और उसमें गीता प्रेस की पुस्तक में उस समय ही गृहस्थ में एक तरह से रहते हुए, घर में रहते हुए भी उन्होंने भागवत की ऐसी टीका लिखी कि सभी व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ गई। इसके पहले भी मुनिलाल की टीका थी, लेकिन उस टीका में भी थोड़ा सा क्या किया, परिष्कार करते हुए थोड़ा सा भावार्थ अनुवाद के रूप में नहीं, उसके एक भाव को व्यक्त करते हुए, तो बता वहीं लगता है कि महाराज जी को ज्ञान की कोई कमी तो थी नहीं, उस अवस्था में भी नहीं कमी थी, लेकिन फिर भी महाराज जी ने हम सबको एक शिक्षा देने के लिए निर्वहन किया कि भाई फिर भी आप वहां रहोगे ना। तो एक महाराज जी का स्वामी त्यागमूर्ति जी का एक बहुत बढ़िया शेर सुनाते थे, माना कि दामन बचाते रहे हम, मगर सेक हरदम तो खाते रहे हम, आग के पास बैठोगे माना कि आप अपने आंचल को बचाकर रखोगे, आग की चिंगारी इसको छुएगी नहीं, जलाएगी नहीं, लेकिन उस विषय के साथ रहोगे, पदार्थ के साथ रहोगे, तो भाई आंच तो आपको सहनी ही पड़ेगी। अब किसी किसी वाची प्यारी लग जाए तो मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी वो आंच तो आंच ही है। तो महाराज जी ने उस आंच को ही पूरी तरह से क्या कर दिया, वो करके संन्यास आश्रम में चले गए, पूरी तरह से संन्यास आश्रम। उसमें बड़ा ऐसा सुना है कि परिवार के लोगों ने विरोध भी किया एक तरह से कि महाराज जी परिवार की सारी जिम्मेदारी पड़ी हुई है और आप एकदम वहां जा रहे हैं, ये सब क्या बात हो रही है, इनके साथ साथ हनुमान साहब पोद्दार या जय दयाल गोयनका के पास गए लोग, तो कहे देखो और कोई लिया होता संन्यास तो उसको मैं मना कर देता, लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से पक गया है उसके लिए संन्यास लेने में कोई आपत्ति है ही नहीं, और उसके योग क्षेम का पालन तो कौन करता है, भगवान ही करते हैं, जो गीता जी का योग क्षेमम वहां में हम, जो नित्य उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है उसके योग क्षेम के पालन की कोई चिंता तो करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो जिसने परीक्ष लोकान कर्म चितान, कर्म से प्राप्त इस लोक की पूरी तरह से क्या कर दिया, परीक्षा कर लिया, और ये बुद्धि में निश्चय कर लिया कि संसार के किसी भी भोग में, किसी भी पदार्थ में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो निर्वेदम आया, तो वह व्यक्ति उसे क्या कर लिया, वैराग्य ले लिया। और जिसको संसार के हर विषयों से वैराग्य हो गया, जरा सा भी संशय नहीं रह गया संसार के किसी विषय में सुख है, तो उसको संसार में ले कौन जा सकता है, और संसार में रहता हुआ भी वह संसार के काम का नहीं रहेगा। और फिर वह महाराज जी ने संन्यास जीवन धारण करके और फिर जो वेद वेदांत का प्रचार किया, पूरा विश्व ही उसकी छाया में आज पल पुस रहा है, हम सब एक पक्षी बनकर के उस डाली में क्या ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं। इतना कहते हुए हम अपनी बांगड़ी को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
बहुत ही सुंदर भाव हमारे सर्वेश चेतन जी महाराज ने रखे। महाराज श्री का अंतिम समय का कुछ याद दिलाया तो एक छोटा सा संस्मरण है। महाराज जी ने करवट बदली, पीड़ा थी तो आह प्रेम से, बहुत प्रेम से आह भी करते थे तो बहुत आराम से करते थे और बहुत मीठा तो आह निकली। तो कोई बगल में खड़ा था स्वामी, डॉक्टर स्वामी जी रहे, तो उन्होंने पूछा महाराज जी तकलीफ है, तो कह नहीं, तो कह आह निकली, तो कह मैं तो आह की आह का मजा ले रहा हूं, मैं तो आह का मजा ले रहा हूं। आह बोल के आह का मजा लेना, तो ये उस समय बातें तो बहुत हैं, और जैसे चित्र चलता है वैसे चलता रहता है। अब उन्होंने शेर सुना दिया, शायद तो आ नहीं है कुछ न कुछ। और जलने जलाने की बात ही थी, तो यहां कल ही अभी बात हो रही थी कि हम तो मसरूफ हुए इतना दीप जलाने में, घर ही जला बैठे दिवाली मनाने में। तो हम महामंडलेश्वर जी से के चरणों में, बहुत ही मीठी बाड़ी, बहुत ही सारगर्भित, धीर गंभीर, मैं तो मुग्ध हो जाता हूं, मुग्ध रहता हूं आपके स्वरूप पे, आपकी वाणी पे। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आज आपको फिर से सुनने का अवसर मिल रहा है।
यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के आवाज खोलें शीर्ष स्वरूप परम सदगुरुदेव ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के चरणों में कोटि से वंदन। आज के आराध्य महोत्सव के आराध्य पुरुष ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के अव्यक्त स्वरूप को कोटि से वंदन। सभा की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय महामृगेश्वर जी महाराज श्री अत्यंत प्रेमास्पद ब्रह्मचारी सर्व चैतन्य जी महाराज, आदरणीय स्वामी प्रीतमानंद जी महाराज, मंच का बड़े ही कुशलता से जिनके द्वारा संचालन का आनंद हम लोग ले रहे हैं, श्री सोमदत्त जी द्विवेदी जी, ट्रस्ट मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सदगुरु चरणानुरागी मातृशक्ति एवं सज्जनों, महान पुरुषों के द्वारा ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के पावन स्वरूप का चिंतन करते हुए हम अपना तन मन और वाणी को पवित्र कर रहे हैं। इसी प्रसंग में मम त्वेताम वाणीम गुण कथन पुण्येन भवतः पुनामि, जिनका गुणगान करने से अपनी वाणी पवित्र हो जाए, इसी पवित्र भाव के साथ पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में दो शब्द समर्पित करना चाहेंगे। सज्जनों, मातृशक्ति मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आया है, यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यांश्च कामान, तम तम लोकम जयते तांश्च कामान, तस्मादात्मज्ञम ही अर्चयेत भूति कामः। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, आत्मज्ञ पुरुष होते हैं, उनकी अभिअर्चना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। क्यों करें? सन 87 में महाराज श्री जी ब्रह्मलीन हुए और प्रतिवर्ष हम लोग महाराज जी का आराधन महोत्सव मनाते हैं। क्या इस आराधन महोत्सव के मनाने से महाराज श्री जी प्रसन्न होते होंगे? वो तो उस स्थिति में भी प्रसन्न है जब आपको अप्रसन्न मालूम पड़ते हो, व्यथित मालूम पड़ते हो, तब भी प्रसन्न है। अभी अभी सोमदत्त जी ने बड़ा सुंदर उनका संस्मरण सुनाया, उनकी जो आहा होती है उसमें भी जो आनंद देख रहे हैं, वो हमारे आराधन महोत्सव की क्या अपेक्षा रखेंगे? उन्हें कोई भी अपेक्षा नहीं है, वो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम है, इनकी उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी सर्वेश जी बड़ी सुंदर बात सुना रहे थे, आचार्य शंकर ने भगवद गीता के भाष्य में एक पंक्ति लिखी है, सर्वत्र यव ही अध्यात्म शास्त्रे कर्तार्थानि लक्षणानि यानि साधनानि च भवन्ति तानि यत्न साध्यत्वात्। जहां जहां पर इन ज्ञानी महापुरुषों के जीवन के लक्षण, उनकी स्थिति, उनकी निष्ठा का वर्णन आता है, वो सिर्फ जानने के लिए नहीं आता है कि ज्ञानी पुरुष अहकाम होते हैं, निष्काम होते हैं, आप्त काम होते हैं, वो पूर्ण होते हैं, जानने के लिए नहीं आता है। जहां जहां उन संतों के जो लक्षण आते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देने के लिए आते हैं। किस प्रकार से इन महान पुरुषों ने अपना जीवन जिया है, हर परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में एक संसारी व्यक्ति कहीं प्रतिकूलता में घबरा जाता है तो अनुकूलता में फूल जाता है, प्राउड में, अभिमान में अपने आप को चूर कर देता है। लेकिन सारी परिस्थितियों में ज्ञानी महापुरुष किस प्रकार की समता रखते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता उनको छू नहीं पाती है। कितनी अच्छी बात सुन रहे थे कि जिनको प्रतिकूलता मालूम पड़ रही है लेकिन स्वयं को वहां भी प्रतिकूलता नहीं, उस आहा में भी एक आनंद की अभिव्यक्ति, आनंद का एक लाभ, आनंद ही वो भी एक आनंद है, आहा भी एक आनंद है। ऐसी जो स्थितियां बनती है मान पुरुषों के प्रवचन से जितना हम लोग नहीं ले पाते हैं, मैं तो कहता हूं कि धन्य है वो लोग जिन्होंने साक्षात उनका जीवन दर्शन लिया है। जो पढ़कर के प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो दर्शन करके प्राप्त किया जाता है। कर्तार्थानि लक्षणानि यानि साधनानि च भवन्ति तानि, इन ज्ञानी महापुरुषों के जीवन के जो लक्षण हैं हम साधकों के लिए वो लक्षण साधन बनकर के सामने आते हैं। उनकी जो स्थिति है उसका अनुसरण करने के लिए, उनके जीवन का अनुसरण करते हुए वो निष्ठा हमारे जीवन में कैसे बने उसको देख देख करके हम लोग प्रयासरत होते हैं। इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनकी अर्चना होनी चाहिए, उनकी वंदना होनी चाहिए, उनका आराधन होना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। यम यम लोक मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व काम ये तयाश्च कामान, क्योंकि उनका संकल्प अपना संकल्प नहीं है, वो तो साक्षात ईश्वर संकल्प हो जाता है। महापुरुष ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुष सत्संकल्प होते हैं, इसलिए जिस प्रकार का संकल्प उनके मन से उठ जाता है, वो उठाते नहीं है, उठ जाता है, संकल्प करते नहीं है पर संकल्प हो जाता है। और जैसा जैसा संकल्प अपने या प्राय किसी के लिए भी हो जाए, वो जैसा संकल्प हुआ है वैसा का वैसा ही परिणित भी हो जाता है। हम लोग कितने संकल्प करते रहते हैं, कितने विकल्प उठते रहते हैं, कितने प्लानिंग होती रहती है, ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए, पर संभव नहीं है कि हो ही जाए। मगर ऐसे ज्ञानी पुरुषों का जो संकल्प होता वो सत्य ही होता है। इसलिए जिनको संकल्प सिद्धि करवानी है अपने लिए या अन्य किसी के लिए, वो क्या करे, उन ज्ञानी पुरुषों की अर्चना करे, वंदना करे, उपासना करे, आराधना करे। सकामियों के लिए भी कहा गया है, जो चाह रहा है, इसका अर्थ हुआ कि जैसे भगवान से काम इच्छा करते हैं, कोई श्रीनाथ जी दौड़ करके जाते हैं किसी लिए, श्रीनाथ जी के लिए, कोई खाटू श्याम जी दौड़ के जाते हैं खाटू श्याम जी के लिए, किसके लिए जा रहे हैं, उनसे अपने अभिष्ट की प्राप्ति करवाने के लिए। तो सकाम कर्म करने वाले चाहने वालों को भी शास्त्र कहता है कि ऐसे आत्मज्ञ महान पुरुषों की आराधना करनी चाहिए, यदि कोई कामना भी है तो आपकी पूर्ति होगी। जो कोई उच्च कोटि के साधक हैं तो उनका जीवन दर्शन करके, अध्ययन करके, श्रवण करके और तदनुरूप अपनी स्थिति बनाने के लिए साधना में प्रवृत्त होगा, उसके लिए भी उन महान पुरुषों का जीवन अनुकरणीय होता है। तो चाहे सकाम हो और चाहे साधक हो, सबके लिए महान पुरुषों का जो जीवन होता है वो अपने लिए अनुकरणीय होता है। इसीलिए कि वो एक व्यक्ति नहीं रह जाते हैं। वेद का मंत्र प्रसिद्ध है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। उन्होंने परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में अनुभव किया है, और जिन्होंने परमात्मा को आत्मा के रूप में अनुभव किया हो वो आत्मा परमात्मा का वहां भेद नहीं है, साक्षात वो ब्रह्म स्वरूप ही है, परमात्मा स्वरूप ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म को जानने वाले साक्षात ब्रह्म रूप में ही प्रतिष्ठित होते हैं, वो स्वयं ब्रह्म है, इसलिए वो सत्संकल्प है। जो परमात्मा के या ईश्वर के लक्षण शास्त्रों में आते हैं आप देखोगे वो के वो सारे लक्षण इन ज्ञानी महापुरुषों के जीवन के आते हैं, वही लक्षण आएंगे। ज्ञानियों के जो लक्षण हैं और परमात्मा के जो लक्षण है समान ही होते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भेद नहीं होता। अनादि काल से अज्ञानी जीव जिस कर्म बंधन में पड़ करके अनंत बार जन्म ले चुके हैं और उस जन्म प्रवाह में निरंतर चल रहे हैं, वो ज्ञानी पुरुष उस प्रवाह को तोड़ करके साक्षात ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए मंत्र आया, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, अध्यक्षीय प्रवचन आपको सुनना है, पर एक बात मुझे ध्यान में आ रही है कि आखिर ये महान पुरुष इस प्रकार से वंदनीय क्यों हुए, ये स्थिति क्यों आई। इसलिए आई कि वो कर्म बंधन उनके सर्वथा निवृत्त हो चुके हैं, वो साक्षात ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस कार्य कारणात्मक परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर जितने भी कर्म हैं और जितने संशय हैं, जो अज्ञान ग्रंथि है, सबका नाश हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, क्योंकि हृदय की अज्ञान जो ग्रंथि है उसका भेदन हो चुका है। द्वैत अद्वैत आदि संबंधित जितने भी संशय हैं सबकी समाप्ति हो चुकी है। यहां तक कि सारी दुनिया जिस कर्म बंधन में पड़ी हुई है, उस कर्म बंधन को, उस पास को काट करके उस तरह से निकल पड़े हैं जैसे उपनिषद ने उदाहरण दिया है। वामदेव ऋषि अपनी घोषणा करते हैं, शयन पक्षी जो होता है ना, बाज, अन्य जितने भी पक्षी होते हैं आप उसको पिंजरे में कैद कर सकते हैं, लेकिन बाज पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता है, उसको जाल में बद्ध करके नहीं रखा जा सकता है। ऐसी कुशलता प्राप्त होती है, जिस जाल में उसको कैद किया जाता है उस जाल को काट करके वो पक्षी उड़ जाता है, स्वतंत्र उड़ जाता है। तो जिस प्रकार से बाज पक्षी सारे बंधनों को काट करके स्वतंत्र उड़ जाता है, ये ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण कर्म बंधनों को काट करके ब्रह्म स्वरूप से स्वतंत्र उड़ जाते हैं, इसलिए उनके लिए कोई बंधन नहीं रह जाता है। और ऐसे जो निर्बंधन पुरुष हैं, उन निर्बंधन पुरुष की जब हम उपासना करते हैं तो वो उपासना का लक्ष्य होता है उपासक उपास्य भाव को प्राप्त हो जाए। जो उपास्य है वो बंधन रहित स्थिति में है, वो मुक्त है, विनिर्मुक्त है, इसलिए साधक भी उसी विनिर्मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मुक्त ही तो मुक्त करा सकेंगे ना महाराज। संत कबीर कहते हैं, बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। एक व्यक्ति इधर किसी कंभे के साथ बंधा हुआ हो और दूसरा किसी अन्य दूसरे कंभे के साथ में बंधा हुआ हो, एक बंधा हुआ व्यक्ति सामने वाले से पुकार करें कि आप मुझे खोल दीजिए, मैं बंधा हुआ हूं, वो सामने वाला कहेगा मैं तुझे क्या खोलूं, स्वयं ही बंधा पड़ा हूं। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, तब कर सेवा निर्बंध की पल में देत छुड़ाई। जो खुद मुक्त है वही दूसरे को मुक्त अवस्था की अनुभूति करवा सकते हैं, इसलिए स्वयं मुक्त स्वरूप, सारे बंधनों से मुक्त, साक्षात ब्रह्म स्वरूप महाराज श्री जी के पावन जीवन को हम स्मरण करते हुए आज उनके पावन चरणों में जो हमारे श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, हम अपने ही पवित्रता के लिए, अपने ही स्थिति के लिए कर रहे हैं। ऐसे महाराज श्री जी के पावन अव्यक्त स्वरूप को कोटि से वंदन करते हुए, उनके चरणों में पुनः पुनः नमन करते हुए अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।
मैं प्रणाम करता हूं मंडलेश्वर जी को। प्रेम कुटीर में आपका चल रहा है सत्संग, आपने भी यहां पे पधारने की कृपा की।
ओमेश्वर देव जी महाराज।
विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योज भूतं यथा निद्रा यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
समष्टि के कण कण में विद्यमान, जैसा कि श्रुति का प्रमाण है, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते। इस श्रुति के प्रमाण से समष्टि के कण कण में विद्यमान परम पूज्य महाराज श्री के श्री विग्रह में प्रणाम करते हुए, जिनके आराधन महोत्सव में सम्मिलित हुए उन महाराजा श्री के श्री चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए, हमारी परंपरा में बड़े महापुरुषों का नाम लेने में थोड़ा संकोच होता है। आज के इस सभा के अध्यक्ष परम पूज्य आदर्श महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज, उनके पार्श्व में विराजमान आदर्श महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज, सर्वेश चैतन्य जी महाराज, प्रीतमानंद जी महाराज, उपस्थित संत वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति, पूज्य महाराज श्री के इस आराधन महोत्सव में महाराज श्री का अपना जो स्वरूप था वह कैसा था, उस स्वरूप पर थोड़ा विचार करेंगे और साधकों के लिए उनके उस स्वरूप से क्या उपलब्धि हुई। हमारे यहां वेदांत प्रस्थान में प्रस्थानत्रयी को स्वीकार किया गया है। उस प्रस्थानत्रयी और अन्य भी ग्रंथों में भगवत्पाद शंकराचार्य जी के अभिप्राय को समझने वाला और स्पष्ट करने वाला सबसे प्रामाणिक ग्रंथ अगर माना जाता है तो वह आनंदगिरी टीका। जब कभी भी भाष्य की कोई पंक्ति सामने आती है तो यह होता है कि टीका लाओ, फिर उसका जो टीका में निर्णय होता है वह स्वीकार किया जाता है वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत दर्शन में। संपूर्ण सन्यासी परंपरा में ऐसी ही मान्यता है और हमने जैसा अब यह अंकुर तो वहीं का है, पूज्य महाराज श्री के आश्रम में ही यह अंकुर उत्पन्न हुआ, वहीं से पल्लवित होते हुए अब कहां कहां पहुंच रहा है यह भी उन्हीं की ही कृपा है। तो उनकी विलक्षणता साधकों के लिए क्या थी, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय को संभवतः सभी ने सुना होगा, यहां के श्रोताओं ने तो जरूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा। उसमें बिल्कुल छोटी सी बहुत सीधी सी सरल भाषा में भगवान शब्द की व्याख्या आई हुई है पूज्य महाराज श्री के श्री मुखारविंद से। जितने साधक होंगे सब ने पढ़ रखा होगा, संभवतः सबको वह व्याख्या सामने उपस्थित हो गई होगी, वह शब्द भी सामने आ गए होंगे। थोड़ा सा उनका निवेदन करेंगे परम पूज्य आज के अध्यक्ष महोदय के श्री चरणारविंदों में प्रणाम करके क्षमा याचना करते हैं, कभी एक दो मिनट आगे पीछे हो जाए तो क्षमा करेंगे। और कृपा करके उन्होंने अपने समय में से हमें दिया है, ये तो उनकी कृपा है। कल हमारे मन में आया कि महाराज श्री का आराधन महोत्सव हो रहा है, अब जीवन ही जन्म ही उसी आश्रम का है, उसी स्थान का है, तो कृतज्ञता की दृष्टि से फिर मन में तो थोड़ा होना चाहिए ना, इसलिए फिर हमने कहा कि चलो जाते। तो पूरे पूज्य महाराज श्री ने भगवान शब्द के अर्थ को जब निरूपण करना प्रारंभ किया तो भा भवनम भा भरणम गा गमनागमन और वा वेदना वेदन आ अध्यारोपापवाद और ना नेति नेति। सबको याद होगा, जितने साधक बैठे होंगे सबको याद होगा। ऐसा लगता है कि बहुत सरल बिल्कुल लोक प्रचलित राष्ट्रभाषा में भगवान का शब्द का भगवान इस शब्द का महाराज श्री ने व्याख्यान कर दिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पर हमारे दशम पीठाधीश्वर कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ के दशम पीठाधीश्वर जी कहा करते थे कि यह जो भगवतपाल शंकराचार्य जी का भाष्य है देखने में तो लगता है कि बहुत सहज है बहुत सरल है, पर भाष्यम प्रसन्न गंभीरम, ये लगता तो है कि बहुत सरल है बहुत सरल है, पर जब इसमें प्रवेश करो तो मालूम पड़ता है कि कितना गहरा है कितना गहरा है। तो महाराज जी के इन छोटे से बिल्कुल हल्के शब्दों में जब प्रवेश करो तो मालूम पड़ता है कि यह कितनी गहराई तक पहुंचा है, किस प्रकार से इन चलते फिरते लोक भाषा के शब्दों से पूरे वेदांत दर्शन के पूरे अद्वैत दर्शन का निरूपण हो गया केवल एक भगवान शब्द के द्वारा। भगवतपाद शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में संभवतः तृतीय अध्याय में प्रारंभ तो हो गया उनका भाष्य, प्रारंभ से ही हम मानेंगे क्योंकि उपक्रम भाष्य भी है, भले ही द्वितीय अध्याय के एकादश श्लोक से प्रारंभ हुआ हो पर उपक्रम भाष्य की प्रामाणिकता से संपूर्ण गीता पर ही भाष्य है ऐसा स्वीकार किया जाएगा। तो तृतीय अध्याय में उसके पहले भी कई बार श्री भगवानुवाच आ चुका था, पर संभवतः कोई 35-36वें श्लोक में श्री भगवानुवाच के अनंतर जो श्लोक आया काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा विद्धे नमिह वैरिणम, इसके भाष्य में भगवतपाद शंकराचार्य जी ने भगवान इस शब्द का व्याख्यान किया और इस शब्द के व्याख्यान में दो श्लोकों भगवतपाद शंकराचार्य जी ने वहां पर उद्धरण में दिए हैं। किसी भी शब्द का हमारे यहां वेदांत में भी और साहित्य की परंपरा में भी दो अर्थ स्वीकार किया जाता है, एक उसका शक्यार्थ होता है जो शब्द की अपनी शक्ति होती है और एक लक्ष्यार्थ होता है जो उस शब्द का लक्ष्य होता है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने इस भगवान इस शब्द का शक्यार्थ भी बताया और लक्ष्यार्थ भी बताया। प्रथम श्लोक के द्वारा तो शक्यार्थ निरूपण किया और द्वितीय श्लोक के द्वारा उसका लक्ष्यार्थ, भगवान इस शब्द का लक्ष्यार्थ क्या इसका निरूपण किया। अब ज्यादा व्याख्यान का समय नहीं, इसलिए जो शक्यार्थ है उसको छोड़ देते हैं, जो लक्ष्यार्थ है उसको लेते हैं। लक्ष्यार्थ में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं उत्पत्तिम च विनाशम च भूता नामागतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान किसको कहते हैं? जो उत्पत्ति को जानता है, जो विनाश को जानता है, जो विद्या को जानता है, जो अविद्या को जानता है, जो गमन को जानता है, जो आगमन को जानता है। भूता नाम आगतिम गतिम, भूत प्राणी कहां से आए हुए हैं कहां जाएंगे उसको भगवान कहते हैं। अब एक एक शब्द के समर्थन में एक एक श्रुति को यहां पर उदाहरण में दिया जा सकता है, पर हम समय की सीमा में प्रतिबंधित होने के कारण से बिल्कुल एक भी श्रुति नहीं उच्चारित करेंगे, केवल ये बताएंगे कि भगवान शंकराचार्य जी का यह श्लोक जो वेदांत दर्शन का निरूपण कर रहा है, भगवान शब्द का निरूपण कर रहा है। इससे परम पूज्य महाराज श्री के जो व्याख्यान है भगवान इस शब्द का जो व्याख्यान उससे सम्मिलित करके देखें तो मालूम पड़ेगा कि भाष्य भगवान शंकराचार्य का भाष्य किस प्रकार से महाराज श्री के हृदय में प्रतिष्ठित था और अपना वेदांत सिद्धांत किस प्रकार से उनके हृदय में प्रतिष्ठित था, भरण और भवन उत्पत्तिम च विनाशम च, बिल्कुल शब्दशः एकदम गमनागमन, वेति विद्याम अविद्याम च तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया, विद्या और अविद्या, वेदना और वेदन होगा तभी संकल्प मात्र से पूर्व कल्प की सृष्टि में कौन सा जीवात्मा किस योनि में था। ब्रह्मा जी के हृदय में संकल्प मात्र से ज्ञान करा दिया भगवान। और अध्यारोपापवादाभ्याम, ऐसा विलक्षण अर्थ, ऐसा विलक्षण अर्थ किसी के हृदय में स्फुरित हुआ और कब हुआ, कहां हुआ, कौन सा ऐसा महापुरुष हुआ, अभी तक कोई हमें बता करके दिखा दे। अध्यारोपापवादाभ्याम और नेति नेति, कहां से आए ये अपना सिद्धांत जो रूपवान होकर के पूज्य महाराजा श्री के रूप में विद्यमान है, उनके शब्दों में और उनके इस राधन महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिला, बाड़ी को पवित्र करने का अवसर मिला। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
एक ग्रंथ इस अवसर पे आया है ब्रह्मस्तुति के नाम से, भागवत के दसम स्कंद में जो ब्रह्मा का मोह है उसमें, उसके बारे में महर्षि के पास है। हम स्वामी विवेकानंद जी से, ललित भाई से कहते हैं कि वो उद्घाटन कराएं, लोकार्पण कराएं, महामंडलेश्वर जी महाराज से समक्ष रखा है। हाँ, ये तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाण, इसमें महाराज जी ने कहा है कि भगवान की कृपा सब पर है, उसकी परीक्षा मत करो, उसकी समीक्षा करो, समीक्षा भी मत करो, सुसमीक्षा करो। बहुत ही मधुर ग्रंथ है और आप लोगों के उस बीच में आया है। सत साहित्य की तरफ से 25%, 20% सोरावाला जी की तरफ से, शोरेवाला जी की तरफ से 15%, 35% की छूट 15 दिनों तक हमारे प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से 50, आज के लिए 50%, 15 दिन के लिए 35%। ये ग्रंथों पे रहेगी और जिनको जो ग्रंथ लेने हैं, न हो यहां तो नोट करा देंगे तो भी मिल जाएंगे, बाद में 15 दिनों तक मिलेंगे। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं महामंडलेश्वर जी से कि मैं समय नहीं बचा पाया। अब आप कालातीत रूप में प्रकट होके हमारा मार्गदर्शन करें।
सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां, वंदे गुरुपरंपरां। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन परम गुरुदेव के पावन चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय इस आराधन महोत्सव के आराध्य पुरुष महाराज श्री जी के पावन चरणों में कोटिशः प्रणाम। परम सम्माननीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, परम प्रेमास्पद श्री सर्वेश चैतन्य जी महाराज, परम प्रेमास्पद श्रीमत् स्वामी प्रीतमानंद जी महाराज, परम प्रेमास्पद आचार्य श्री उमेश्वर देव जी महाराज, परम प्रेमास्पद कुशल मंच संचालक श्री सोमदत्त जी महाराज, परम प्रेमास्पद समस्त सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं, महाराज श्री जी के आराधन महोत्सव के उपलक्ष्य में महाराज श्री जी को केंद्र बिंदु बना करके बड़ी सुंदर सुंदर बातें अपने जीवन को कृतार्थ करने वाली महापुरुषों के मुखारविंदों से श्रवण करने को मिली और हमारे परम प्रेमास्पद द्विवेदी जी कह रहे थे कि समय नहीं बचा पाया क्योंकि आपने कई बार सुना होगा महामंडलेश्वर स्वामी मोहनान जी महाराज से, वे कहते हैं अध्यक्ष उसी को बनाया जाता है जिसको बोलने नहीं देना होता है। अध्यक्ष का अर्थ भी होता है कि आंख से देखते रहो। तो भी महाराज श्री जी एक अध्यात्म जगत में ऐसे मार्तंड के रूप में आए और उस समय जितने भी उनके सानिध्य में जिज्ञासुजन आए और उनके अंतःकरण में छाया हुआ अज्ञान अंधकार था, उस अज्ञान अंधकार को समाप्त कर दिया जैसे सूर्योदय अपने उपस्थिति से ही सूर्य समस्त रात्रिकालीन अंधकार को दूर करता है। अब महाराज श्री जी का जो लोक पावन शरीर था वो भले ही नहीं रहा लेकिन महाराज श्री जी हैं। जीवन भर महाराज श्री जी ने आचार्य शंकर की परंपरा के अनुसार आपको हमको सबको यही तो उपदेश दिया है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर तो क्षेत्र है और हम उस क्षेत्र के दृष्टा है, शरीर दृश्य है। कोई भी दृश्य दृष्टा का स्वरूप नहीं होता, दृष्टा उससे विलक्षण होता है। वह दृश्य न रहने पर भी रहता है, दृश्य के भाव को भी प्रकाशित करता है, अभाव को भी प्रकाशित करता है। महाराज श्री जी का शरीर न होने पर भी महाराज श्री जी विद्यमान है और महाराज श्री जी का स्वरूपकारी जो स्वरूप है वो है वाणी। हमें जिस स्वरूप को जानने से हमारे जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होगा उस स्वरूप में प्रमाण है शब्द और शब्द है महाराज श्री जी जैसे महापुरुषों का जो शब्द होता है वह वेद से कम नहीं होता। दो प्रमाण हैं, एक तो श्रुति और दूसरी स्मृति। और जो सिद्ध महापुरुष हुआ करते हैं वेदांत सिद्धांत का अपने जीवन में करामलकवत अनुभव कर चुके होते हैं तो वेद की दृष्टि में वे माने जाते हैं ब्रह्म ही, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। और युक्ति भी बताती है कि जिसकी अहंता जहां है वह वही है। तो ब्रह्मज्ञानी की अहंता कहां होगी ये हम नहीं पता कर सकते, हम नहीं जान सकते। वेद जानता है और स्वयं ब्रह्मज्ञानी जानता है, क्योंकि अहंता तो एक चित्त की वृत्ति है ना। चित्त की वृत्ति को स्वयं अपने आप जाना जा सकता है। तो ब्रह्मज्ञानी की अनुभूति भी ये होती है कि ब्रह्मज्ञानी को पूछो तो वे कभी शरीर के रूप में अपने आप को नहीं बताएंगे, उनकी अनुभूति बताएगी कि अहम ब्रह्मास्मि। तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति के अनुसार ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म हुआ करते हैं, और ब्रह्म है वेद के उपदेष्टा। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, इस मंत्र के अनुसार ब्रह्म यानी परमात्मा ही, परमेश्वर ही, नारायण ही संसार में सर्वप्रथम अपनी प्रथम संतान के रूप में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उनको वेद का उपदेश करते हैं। तो वेद उपदेष्टा ब्रह्मा को स्वयं परमात्मा है, और वही परमात्मा वेद के दृष्टि में और भगवान की वाणी के दृष्टि में भी, गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, वो ब्रह्म रूप होते हैं, और उनकी वाणी भी वेद वाणी के तरह ही मानी जाती है, वेद वाणी ही है। हमारे दृष्टि में भले ही वे पुरुष विशेष हो, लेकिन वस्तुतः वे ब्रह्म ही हैं, और उनकी वाणी आज भी वे सशरीर रहते हुए जैसा उपकार जिज्ञासु जनों का करते थे, ऐसा ही उपकार अनेकों जिज्ञासुओं का उनकी वाणी के माध्यम से आज भी हो रहा है। नेपाल में कोई एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उन्होंने महाराज श्री जी का सशरीर दर्शन नहीं किया है, लेकिन वो उनके ग्रंथों का अध्ययन करके उन ग्रंथों के माध्यम से ही उन्हें आंतरिक मार्गदर्शन ऐसा मिला। जब मैं शताब्दी समारोह महाराज श्री जी का मनाया जा रहा था, समापन सभा की अध्यक्षता कर रहा था, उस समय वो थे और बता रहे थे, क्या नाम है उनका,
दामोदर जी।
तो उन्होंने यानी जो उपकार महाराज श्री जी के शरीर से हो रहा था, वही उपकार आज भी उनके ग्रंथ कर रहे हैं, वाणी कर रही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण धराधाम से अपना अवतार कार्य संपन्न करके साकार स्वरूप का विसर्जन कर रहे थे, और फिर उन्होंने अपना वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत यहां पर छोड़ा, और भागवत के माध्यम से, गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का आज भी, उस समय जो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव लोग करते थे, वही अनुभव जो भगवान कृष्ण के निकटवर्ती अपने आप को मानते हैं वे करते हैं। और ये जो सत साहित्य ट्रस्ट है, ये महाराज श्री जी की आराधना वस्तुतः बिल्कुल सफल रूप से कर रही है, इसलिए कि महाराज श्री जी के वाणी को, इस वाणी के जो पिपासु जिज्ञासु जन हैं, उन जिज्ञासु जनों तक पहुंचाने में प्रतिवर्ष कई ग्रंथों का प्रकाशन करके महती भूमिका का निर्वहन करती है, इसलिए बड़ी धन्यवाद की पात्र हैं यह ट्रस्ट। इसी क्रम में महाराज श्री जी के द्वारा किए गए जो उस समय के प्रवचन आदि हैं ऑडियो आदि के रूप में, उनको महाराज श्री जी के कई एक साधकों में से लिखने में ऑडियो से फिर उसे लिखना बड़ा कठिन होता, अपने मन को बड़ा एकाग्र करना पड़ता है। और महाराज श्री जी के उस वाणी में एकाग्र करके अपने मन को वाणी के शब्द के अर्थ में, और महाराज श्री जी के शब्द का अर्थ तो वही होगा जो वेद प्रतिपाद्य परमात्मा का स्वरूप होगा, और उसी स्वरूप के आकार की वृत्ति जब तक नहीं बनेगी तब तक ठीक ठीक नहीं लिख पाएंगे, और फिर लिखे हुए को प्रकाशित करना आदि करके एक प्रकार से महाराज श्री जी का जो पूर्ण स्वरूप है, अखंड आनंद रूप परमात्मा स्वरूप है, उस स्वरूप की आराधना केवल आज के दिन ही नहीं करता है। इस कार्य में लगे हुए जो भी ग्रंथ का रूप देने में उनके प्रवचन को लगे हुए हैं, वे प्रतिदिन एक प्रकार से महाराज श्री जी की आराधना में लगे हुए हैं। और मंडलेश्वर जी महाराज बता रहे थे कि तस्मात् आत्मज्ञम हृदय भूति कामः, वेद ने बताए हुए हैं दो फल, और उन दो फलों के लिए अलग अलग दो साधन, एक तो अभ्युदय दूसरा निःश्रेयस। अभ्युदय का साधन है प्रवृत्ति मार्ग कर्मकांड, और निःश्रेयस का साधन है ज्ञान। लेकिन अभ्युदय चाहने वाले को अभ्युदय और मोक्ष चाहने वाले को निःश्रेयस, चाहने वाले को निःश्रेयस यदि किसी एक साधन से प्राप्त होता है तो वो है ब्रह्मज्ञानी की आराधना। और ब्रह्मज्ञानी की आराधना, महाराज श्री जी जैसे महापुरुष की आराधना से साधक दोनों भी पा सकते हैं, और महाराज श्री जी निश्चित ही अपने अखंड आनंद स्वरूप का अनुभव उनको करा रहे हैं, और वे इतने निकट पाते हैं अपने आप को उस आनंद स्वरूप के, इसलिए तो लगे रहते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना फल के मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, और ये सब लगे रहते हैं का अर्थ है उनको महाराज श्री जी को जिस आनंद की अनुभूति होती थी उस आनंद के निकट निकट अपने आप को पा रहे हैं साधक। महाराज श्री जी की कृपा से ये सब प्राप्त हो, सब साधकों को उनकी वाणी दिनों दिन आने वाले अनेकों साधकों के अंतर अंधकार को दूर करें, ज्ञान प्रकाश उनके हृदय में प्राप्त कराएं। इसी शुभ भावना के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
नारायण नारायण नारायण। बोध वाक्य की बात होती है, वाणी की बात होती है, तो वो संस्मरण, वो बोध वाक्य जो है हमारे गुरुजी आपके गुरुजी के बीच का एक बोध वाक्य है, बिना हुए ही भास रहा है। ये वाक्य बोलना दोनों महापुरुषों की याद दिला देता है, और ऐसे ही वो दोनों साकार साक्षात आके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और आपकी कृपा आनंद महोत्सव में हमको मिली थी, मैं एक बार पैर छूता था ये दो बार मेरी पीठ ठोकते थे इतना स्नेह इतना प्रेम, बहुत ही बढ़िया। तो एक भक्त ने भगवान के लिए लिखा, तेरी याद ने दिल में जो दर्द दिया, तो ऐसा मजा मैंने उसका लिया, भगवान की तेरी याद ने दिल में जो दर्द दिया तो ऐसा मजा मैंने उसका लिया, न करूं न करूं न करूं मैं दवा, कोई दवा मैं नहीं करूंगा, क्यों मैंने खाई है अब तो दवा की कसम। तो गंगा जी की पूजा किस जल से करेंगे, तो गंगा जी की पूजा हम गंगा जल से ही करेंगे। ऐसे ही महाराज जी की जब पूजा करनी है तो हम महाराज जी की ही वाणी महाराज जी के चरणों में, और हम सब महाराज जी के, ये जो भी यहां स्वरूप दिख रहा है वो महाराज श्री का ही स्वरूप है, मैं स्वरूप को बार बार प्रणाम करता हूं। गिरीश भाई जी आप आभार व्यक्त करेंगे। नारायण
हरिओम। हमारे प्रिय सोमदत्त जी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई है,
और हमारे सरोज चैतन्य जी ने एक चिंगारी की बातें बताई, तो कॉलेज और स्कूल में मैंने यहां पहले बोला भी है, फिर से मैं बोलना चाहूंगा चिंगारी के बारे में, क्योंकि आराधन महोत्सव है तो यही हम लोग लेके जाए। जो मैंने कॉलेज और स्कूल में एक पंक्ति सब बचपन से लिखने का शौक है, हालांकि गुजराती है मगर समझ जाएंगे आप। एक आग सी भड़की गई, जब चिता पे शरीर रहता है तो एक आग हम लोग जलाते हैं। एक आग सी भड़की गई, सुखाक थई ढली गई, मुझ आत्मनी चिंगारी, प्रभु सु तुझ चरण मां मड़ी गई। जो चिंगारी निकली, महाराज जी ने बताया ना चिंगारियां सिंह चढ़ाव ऐसे ऐसे, तो मुझ आत्म की एक चिंगारी प्रभु उस समय जब मैं चिता में बैठा हूं तब तुझ चरण में मिल गई। मैं धन्य हुआ प्रभु कि मेरी पाप की दुनिया ही सुलग गई। तो यह आराधन महोत्सव में आभार क्या माने आशीर्वाद में ही करवट ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि संसार में तो क्या है कि हर करवट हमारी आह के लिए नहीं वाह के लिए होती है, और यह वाह से हम दूर रहे। और जैसे हमारे बताया कि करवट कोई भी हो, कोई भी दर्द में हो सुख में हो, मगर वह आह ऐसी न हो कि हम खाली वाह वाह के लिए करें, ईश्वर का नाम लें, और ईश्वर की अनुभूति हमें ऐसी संतों के द्वारा मिल रही है, यह ईश्वर की बड़ी कृपा है। पूज्य हमारे अध्यक्ष के रूप में विराजे हुए महाराज जी से हम जितना भी सुनते हैं तो लगता है सुनते ही जाए। प्रभु को नियम बदलते देखा, आज संत को भी नियम बदलते देखा, 10:15 हो गए। अपना स्वार्थ था, और आपके चरणों में वंदन करता हूं, मगर उनको पूरा सुनना है हमें, आनंद लेना है पूज्य महाराज जी के साथ। प्रातः प्रवचन में भी पूज्य महाराज जी द्वारा, और स्वाध्याय प्रवचन में 7:30 से 8:30, 9:15 से 9:30 हमें पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद प्रवचन के रूप में मिल रहे हैं। सभी संतों के चरणों में फिर से वंदन करते हुए अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।